परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन तुम पर अर्पण कर दे हे जगदाता, जीवन तुम पर अर्पण कर दे हे जगदाता, हे जगदाता, हे जगदाता।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और कुशल हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी मित्रों का जो प्रतिदिन मेरे साथ बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों शमूएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देख लिया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दाऊद युद्ध पर नहीं गया और छत पर परेशानी में टहल रहा था कि उसने बैतसेदा नामक एक स्त्री को देखा जो नहा रही थी और उसके साथ व्यभिचार किया और वह सोचता था कि बात दब गई है, परंतु परमेश्वर सब बातों को देखता है और उसका उसे दंड भी मिलेगा। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 12 उसके 1 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे। इस अध्ययन में हम देखेंगे नातान ने आकर उसे उसके पाप के कारण झिड़का, दाऊद ने पश्चाताप भी किया। तो आइए हम आगे जाएं। वे आलोचक जो यह कहते हैं कि दाऊद पाप करके बच गया, उन्होंने वचन ठीक से नहीं पढ़ा है। मेरे मित्रों, हमें आगे भी पढ़ना चाहिए। जब भविष्यद्वक्ता नातान ने दाऊद पर उसका पाप प्रकट किया तब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, परंतु नातान ने उसे परमेश्वर का दंड सुना ही दिया। दाऊद को सीखना था कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर का जन पाप में पड़ सकता है, परंतु वह पाप ही में पड़ा नहीं रहेगा। इसी से परमेश्वर का जन और सांसारिक मनुष्य का पहचान होता है। एक भेड़ कीचड़ में गिरकर अति शीघ्र वहां से निकल आने का यथासंभव प्रयास करता है। सुअर तो कीचड़ में ही पड़ा रहता है और आनंदित होता है, क्योंकि वह स्थान उसी के लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य मिट्टी के पात्र की नाई टूट सकते हैं, एक चूक और मिट्टी का बहुमूल्य पात्र नष्ट हो जाता है। कोई बहुमूल्य वस्तु व्यापारी द्वारा कम मूल्य पर तब बेची जाती है जब वह उसमें कोई दोष देखता है। मैं कम दर पर बिकने वाली वस्तुओं का बहुत अच्छा ग्राहक हूं, मैं संपूर्ण राज्य में भ्रमण करता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं लिखा हुआ देखता हूँ सेल अर्थात कम मूल्य पर बिक्री, तो मैं तुरंत उस दुकान में घुस जाता हूँ। मैं प्रायः यही देखता हूँ कि किसी न किसी दोष के कारण माल सस्ते में बिकता है। एक छोटा सा दोष और उसका मूल्य गिर जाता है। मेरे मित्र, अब दाऊद का मान भी इस दोष के कारण गिरेगा। हम अध्याय 11 में देखेंगे कि दाऊद का पाप उसकी परिपूर्णता में है। परमेश्वर का वचन उसके प्रति सहनशील नहीं है। परमेश्वर का वचन दाऊद के पाप पर सफेदी नहीं करता है अर्थात उसे छुपाता नहीं है। उसका पाप अंधकार वरन स्याही का सा काला था। वह शैतान तक, अतः कुंड तक, नरक तक की गहराई में था। अब हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया है। मेरे मित्र, दाऊद के काम से परमेश्वर क्रोधित हुआ और वह निश्चय ही कुछ करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए कुछ किया है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पर मर जाए। पाप ऐसा घृणित है। परमेश्वर भी कहता है कि पाप एक ऐसा अंधकार है कि उसके लिए उसके पुत्र की मृत्यु की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं और पाप में गिरते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ कुछ अवश्य करेगा। मेरे मित्रों, अध्याय 11 में दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा सोच रहा था कि वह कुकर्म करके बच गया है, परंतु वह गलत था। दाऊद को आजीवन पछतावा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों सोचा। मेरे मित्र, पहला पद हमारा परिचय करवाता है। नातान एक साहसी मनुष्य था। दाऊद उसे पल भर का विलंब किए बिना मरवा सकता था कि वह ऐसा साहस कैसे कर सकता है, परंतु नातान चुप नहीं रहा। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा सामुएल की पुस्तक 12 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, नातान ने दाऊद को एक कहानी सुनाई। कहानी उसी का दर्पण में प्रतिबिंब था। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमें ज्यों का त्यों प्रकट कर देता है। नातान दाऊद के सम्मुख दर्पण रख रहा था कि दाऊद स्वयं का रूप उसमें भली भांति देख पाए। नातान जिस समय आया था, संभवतः उस समय राजसी कामकाज से दाऊद को कुछ विश्राम मिला था। अब क्योंकि नातान एक भविष्यद्वक्ता था, इसलिए दाऊद ने उससे पूछा, क्या तेरे पास मेरे लिए प्रभु का वचन है? उसके पास था। उसने दाऊद को किसी नगर के दो मनुष्यों की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति गरीब था और दूसरा बहुत धनवान था। नगर विशेष रूप से वैसा ही था, उसके बंद घर और खेत। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शामिल 12 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। मेरे मित्रों, धनवान और गरीब मनुष्यों की यह कहानी चीर परिचित सी लगती है। धनवान मनुष्य के पास बहुत भेड़े और मवेशी थी। गरीब मनुष्य के पास एक ही भेड़ थी। वह उसके संपूर्ण परिवार की अति प्रिय थी। वे सब उसे खाना देते थे और संभवतः वह बहुत मोटी हो गई थी। उस गरीब के पास बस वही एक संपत्ति थी। मेरे विचार में आज जाति भेद से बढ़कर गरीब अमीर का अंतर अधिक गंभीर है। हम दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उसने उसके लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। मेरे मित्रों, नातान की कहानी परिचित सी जान पड़ती है या नहीं? जी हाँ, उस गरीब के पास इस भेड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, और धनवान मनुष्य के पास बहुतायत से सब कुछ था, तो भी वह अत्यधिक कंजूस था। मैं प्रायः राजनीति की चर्चा नहीं करता हूँ, परंतु यहाँ मैं इस पापी संसार के एक सिद्धांत का उल्लेख करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल कहते हैं कि उनके पास संसार की सब समस्याओं का समाधान है, क्योंकि उन्हें जनता के वोट चाहिए होते हैं। मुझे तो मनुष्य में कदापि विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं कि एक भी राजनेता आज गरीबों का मसीहा बन सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और आज तक हुआ ही नहीं है और न ही कभी होगा। अतः हम इससे मूर्ख बने रहते हैं। सरकारी गरीबी योजनाएं अति रोचक हैं। क्या वे धनवानों पर यथोचित कर लगाते हैं? जी नहीं, कर की भार हम पर पड़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, वे हमारी एकमात्र भेड़ छीन रहे हैं। हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। दाऊद सोच रहा था कि नातान किसी और की समस्या लाकर न्याय मांग रहा था। दाऊद में सही और गलत का विवेक था। वह क्रोधी प्रवृत्ति का मनुष्य था। नातान की कहानी सुनकर वह संभवतः उछल कर पैरों पर खड़ा हो गया होगा। कहाँ है वह पुरुष? हम उसे बंदी बनाकर लाएंगे और फांसी की सजा देंगे। मित्रों, यह बड़ी ध्यानपूर्वक बात है कि दूसरों का अपराध अति शीघ्र दिखाई देता है और अपना दिखाई नहीं देता। दाऊद की भी यही समस्या थी। दूसरा शमूएल 12 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। मित्रों, दाऊद एक प्रचारक सा प्रतीत होता है। किसी और को शिक्षा देना कैसा आसान होता है। उसके दोष गिनवाना, उसका न्याय करना, उसे बताना कि वह क्या करे और क्या ना करे। हम अधिकतर अनाड़ी मनोवैज्ञानिक हैं जो दूसरों का रोग निवारण करना चाहते हैं। दाऊद ऐसा ही था। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। मेरे मित्रों, हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे पढ़ते हैं, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इसराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे मित्रों, दाऊद से यह सच कहने के लिए नातान को अत्यधिक साहस की आवश्यकता थी। मेरे विचार में वह धर्मशास्त्र का सबसे बहादुर मनुष्य था। मैं किसी और मनुष्य के बारे में तो नहीं सोच सकता कि उसकी नातान से तुलना करूं। उसने स्पष्ट कहा, वह तू ही है। अब दाऊद क्या करेगा? वह कोई असाधारण काम ही करेगा, यह तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। डॉक्टर मार्गोली यूथ ने कहा था, यह कब हुआ? स्कॉटलैंड की रानी मेरी कहती है कि वह कानून से बढ़कर थी। चार्ल्स कहता है कि बथशेबा को दंड देना, जेम्स द्वितीय उसके चरित्र के विरुद्ध गवाह खरीदता है, और मोहम्मद दोनों अपराधों को अधिकृत करने के लिए प्रकाशन लाता है। चार्ल्स द्वितीय सार्वजनिक रूप से 7वीं आज्ञा को रद्द करता है। रानी इलिजाबेथ भविष्यद्वक्ता नातान को नौकरी से निलंबित कर देती है, और वर्षों पूर्व विंडसर के नवाब ने उसके लिए अपना सिंहासन त्याग दिया होता। हमारे पास ऐसे नेता भी रहे हैं जो 10 आज्ञाओं की दुहाई देकर नातान को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर देते हैं। मेरे मित्रों, दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके काम उसकी महानता का प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर दाऊद की हर एक मनोकामना पूरी करता है, परंतु दाऊद ने उस वस्तु की लालसा की जो उसकी अपनी नहीं थी। आज की नैतिकता के अनुसार वह पाप नहीं था। परमेश्वर आज भी कहता है कि यह पाप है और उसके मन का व्यक्ति भी नहीं बचेगा। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में आप झांक करके देखें कि हम में से कितने इस प्रकार का पापमय जीवन जी रहे हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरियाह को तो तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरियाह को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। मेरे मित्र, नाता ने जिन शब्दों में पाप का वर्णन किया वे अनिश्चित नहीं थे। क्या आपके विचार में न्यायालय दाऊद को कहे गए नातान के वचनों को सुनकर भौंचक्का नहीं रह गया होगा? यह तो स्पष्ट है कि वहां अनेक जन उपस्थित होंगे। जब नातान ने दाऊद से ये बातें कही थी, उन्होंने सुना होगा कि नातान दाऊद पर ऐसे अपराध का दोष लगा रहा है जो कभी किताबों में लिखा गया हो। दाऊद ने वह किया जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मत करना। क्या वह इससे बचेगा? आइए हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ें। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। क्या मैं कह सकता हूं? मेरे मित्रों, जब यह प्रश्न उठे क्या एक विश्वासी को पाप करने की छूट है, तो इसका उत्तर है हाँ। परंतु पाप करते समय आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आप ऐसा ही करते हैं। दाऊद ने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर परमेश्वर की निंदा की, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तलवार उसके घर के बहुत निकट है, अर्थात न्याय का होना अवश्य है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद के लिए बुराई घर से ही उत्पन्न होगी। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि दाऊद की संतान के ही मध्य क्लेश उत्पन्न होता है। यह अति भयंकर बात थी। दाऊद का हृदय इस कारण टूट गया था, परंतु उसने न तो परमेश्वर से शिकायत की और न ही उसके सम्मुख रोया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उस पर लगाम लगा रहा था। दाऊद केवल वही चाहता था जो उसने भजन संहिता 42 उसके 1 पद में लिखा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। मेरे मित्र, यह क्या ही भयानक बात है। दाऊद का पश्चाताप हम आगे देखते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। दाऊद इस अपराध के लिए मर सकता था। परमेश्वर ने दाऊद को जीवन दान दिया और उसका पाप क्षमा किया, परंतु उसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया। परमेश्वर दाऊद को पाप करके बचने नहीं देगा, अर्थात हम में से कोई भी क्यों ना हो, कितना भी धर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक पापों का न्याय करता है, जब तक कि हम उसके सम्मुख आकर अपने पापों का पश्चाताप न कर लें। यहाँ पर उसे एक जीवन दान मिला है। हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। मित्रों, परमेश्वर के बैरी आज तक दाऊद के इस कुकर्म के कारण उसकी निंदा करते हैं। मित्रों, मैं अलग अलग जगहों पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाता हूं, तो कई बार अनेक ऐसे अविश्वासी या शंकालु जन मेरे पास आकर कहते हैं कि परमेश्वर दाऊद जैसे मनुष्य को कैसे चुन सकता है। वे मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में मुझे, अर्थात मेरी निंदा करते हैं, मेरी ओर देखते हैं। बैरी अभी तक निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर दाऊद को दंड अवश्य देगा। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, तब नातान अपने घर चला गया, और जो बच्चा उरियाह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। मेरे प्रिय मित्र दाऊद परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाया कि वह उस शिशु को जीवन दान दे दे, परंतु उसके पास अंत में यही संदेश पहुंचा कि वह शिशु बच नहीं पाया। दूसरा शामिल 12 अध्याय उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद के सेवकों को आश्चर्य हुआ कि जब तक वह शिशु जीवित था वह टाट ओढ़े राख में था और शिशु की मृत्यु पर उसे शोकित होना था, परंतु वह उठा और स्नान करके कपड़े बदलकर परमेश्वर के भवन में उपासना के लिए गया। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। हम दूसरा शामिल 12 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। मेरे मित्र दाऊद जानता था कि वह शिशु उद्धार पा चुका था। उसने कहा, मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। दाऊद जानता था कि मरने के बाद वह अपने पुत्र से मिलेगा। मेरे प्रियो, शिशु अवस्था में मृत्यु के बाद शिशु प्रभु के साथ होता है। मतिरची सुसमाचार 18 अध्याय के 10 पद में यीशु ने कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहां पर दूत शब्द का अर्थ है आत्मा। अतः जब एक शिशु मर जाता है तो वह तुरंत प्रभु के साथ होता है। यह परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। आपके बारे में मैं तो नहीं जानता, परंतु मेरे लिए यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो शिशु छोटी अवस्था में मर जाते हैं एक दिन वे परमेश्वर के पास हमें मिलेंगे। यदि आपने अपने छोटे नन्हे बालकों को खोया है तो प्रिय मित्र आप निराश मत होएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके अनुसार चलें और निश्चय जानें कि एक दिन आप उससे मिलेंगे। दाऊद अपने शिशु बालक की मृत्यु पर शोक रहित था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उनका स्वर्ग में मिलना होगा। परंतु उसके पुत्र अबशालोम की मृत्यु पर ऐसा नहीं था। वह अनेक वर्षों बाद मरा और दाऊद के दुख का कारण था। उसके लिए दाऊद ने शोक किया और रोया। क्यों? दाऊद को निश्चय नहीं था कि उसका उद्धार हुआ है या नहीं। हम आगे देखते हैं सुलेमान का जन्म। दूसरा शामिल 12 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया कि उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदाह रखा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर यदीदाह अर्थात परमेश्वर का प्रिय, इसका अर्थ यही है। यह नाम परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नातान के मुंह से सुलेमान को दिया था। अब हम आगे देखते हैं दाऊद और एवाब की रब्बा पर विजय। मेरे मित्रों, दाऊद फिर से युद्ध में मैदान में है जहां उसे सदा ही होना था। दाऊद के राज्य का विस्तार होता जा रहा था और वह एक महान राजा हो गया है। उसके पाप का क्या हुआ? क्या बचकर वह साफ निकल गया? मित्रों, हम अगले अध्याय में देखेंगे कि दाऊद का एक पुत्र था जिसने भयंकर अपराध किया। उसने अपनी सौतेली बहन दाऊद की पुत्री के साथ बलात्कार किया। उस बालिका के भाई अबशालोम ने उसकी हत्या की। यह एक अपवाद था और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह समाचार इसराइल में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे होंगे, देखो यह राजा हम पर राज्य करता है, वह अपने घर को तो संभाल नहीं सकता, कैसा अभागा दाऊद है। इससे पहले कि हम दाऊद की जीवनी का अध्ययन समाप्त करें, मैं प्रभु से कहना चाहता हूं कि तूने उसे बहुत कोड़े मार लिए हैं, अब तू उस पर से लगाम क्यों नहीं हटा लेता है। परंतु दाऊद ने ऐसा कभी नहीं कहा। वह परमेश्वर के सम्मुख रोकर कहता था, जिसे हम भजन संहिता 51 उसके 1, 2 और 12 पद में पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे मित्रों, दाऊद चाहता था कि परमेश्वर उसे अपनी संगति में फिर से लौटा लाए, क्योंकि यह सच है कि धर्मी गिरता तो है, अर्थात पाप तो करता है, परंतु वह उसी में पड़ा नहीं रहता, परंतु वह उठ खड़ा होता है। मेरे मित्र, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, परंतु यदि आज आप परमेश्वर के निकटता में रहते हुए भी पापमय जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए यह वचन है कि आप फिर जाएं, वहां पर पड़े न रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उठ खड़े हों। जिस प्रकार से दाऊद अपने पापों का पश्चाताप करता है और फिर से परमेश्वर की निकटता में संगति में लौटना चाहता है, आप भी खड़े हों और परमेश्वर के कार्यों को करें, क्योंकि परमेश्वर भी आपको एक जीवन दान देता है। पाप का फल बहुत बुरा होता है, पाप का परिणाम बुरा होता है, दंड मिलना अवश्य है। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में इन आशीषों को देखा है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के पीछे जो अपना क्रूस यीशु ही।